घरों में जाते चोरी करने, माखन चोरी। उन गोकुल को कभी नहीं छोड़ा था जब छोटे थे, शिशु थे कन्हैया। तो बड़े हो गए जब, तो वह गोकुल से आए थे शक्तावर्त आए थे, शक्तावजा छठी करा, आजकल छठी करा नामक ग्राम है, वहां पर सारे गोकुलवासी आ गए। वहां कुछ 3 वर्ष और 4 महीने बिताने के उपरांत फाइनली सारे गोकुलवासी कहां पहुंच गए, नंदग्राम पहुंचे। तो जब शक्तावर्त में रहते थे, शक्तावर्त, शक्तावर्त, शकट मतलब बैलगाड़ी, शक्तावर्त, आवर्त मतलब गोलाकार, सारी बैलगाड़ी उन्होंने पार्क की जो गोकुल से ले आए थे, और वही रहने लगे। कोई टेंट वगैरह बनाए जैसे आप लोग रहते हो, कोई मैक्सिप, कोई टेम्पररी व्यवस्था करके। तो वैसे कई वर्षों तक रहे गोकुल के वासी। तो वहां कृष्ण बन गए, तो वहां उन्होंने फिर वनों में जाना प्रारंभ किया, और कन्हैया छोटे थे तो छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और कौवा, उनको छोटे बछड़ों को लेके कन्हैया को वृंदावन में जाने की अनुमति मिली। यशोदा तो जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन कन्हैया जाना चाहते थे, बलराम भी जाने लगे थे। फिर नंद बाबा ने कहा ठीक है, जाना चाहते हैं ना, जाने दो। तो हुआ, तो कृष्णा बन गए वत्सपाल, बने। पहले क्या बन गए, कहो मुख से निकलने दो, क्या उसे थोड़े जग भी जाओगे, क्या बन गए, क्या बन गए, वत्स मतलब क्या, बछड़ा। तो वत्सपाल जब बने, तो फिर एक दिन एक आसुर भी आया था भद्र वन में, वो बछड़ा बन के आ गया। एक आसुर क्या बन गया, बछड़ा बना। तो उस बछड़े का उन्होंने, भगवान ने वध किया, तो वत्सासुर, वत्सासुर था, आसुर वत्स के रूप में। तो बछड़े कृष्ण छोटे थे, बछड़े चलाते, तो वहां उन्होंने एक आसुर वत्सासुर का वध भी किया। तो वह फिर यशोदा ये वादा या समझ थी कि कन्हैया कभी कभी जा सकते हैं बछड़े चराने के लिए, हर रोज नहीं, और किसी दूर वन में नहीं जाना, किसी पास के वन में जाओ और जल्दी लौट आओ। हे बलराम, कन्हैया को संभालो, ऐसे कई सारे आदेश दिया करती थी यशोदा। तो वहां रहे शक्तावर्त, और फिर फाइनली नंदग्राम पहुंचे। तो गोकुल में भगवान की का वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस का अनुभव किया, और कुछ सखाओं के साथ भी मिलना जुलना और सख्य रस प्रारंभ हुआ। जब शक्तावर्त में रहते थे, तो वहां मित्रों के साथ बाहर जाना, वन में जाना मतलब मित्रों के साथ खेलने को मिलेगा। जब गोकुल से आ ही रहे थे शकट में बैठ के वृंदावन जाने के लिए, तो कृष्ण ने पूछा था, कहां जा रहे मैया। तो मैया ने कहा हम वृंदावन जा रहे। तो वृंदावन में क्या होगा, बहुत बड़ा मैदान, वहां तुम खेलोगे, हम खेलेंगे हम खेलेंगे हम खेलेंगे। कन्हैया बहुत बड़े बहुत खुश हो गए। तो मित्रों के साथ खेलेंगे तो सारा दिन गोद में नहीं बैठेंगे यशोदा के, या केवल यशोदा के साथ वाला जो रस है उसी का नहीं, और एक रस का स्वादन करेंगे, वो रस होगा सख्य रस। रस सख्य रस, सखाओं के साथ वाला रस, सखाओं के साथ जो आदान प्रदान है सख्य रस। तो फिर फाइनली यहाँ आए नंदग्राम में, तो कृष्ण और बड़े हुए थे उम्र से, तो यहाँ उनका और एक रस का स्वादन प्रारंभ होता है जब नंदग्राम में वे रहने लगे। और रस अब कौन सा रस बाकी है? वैसे वृंदावन में दास्य रस लगभग नहीं है। जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो वैसे कुछ उनके सखा ही उनका जो टिफिन वगैरह है वो ढोते हैं, ऐसे कोई छोटी मोटी सेवा करते सेवक बन के, थोड़ा दास्य का झलक है। लेकिन वैसे ब्रज में वृंदावन में दास्य भाव का अभाव है। किस भाव का अभाव है? दास्य भाव का अभाव है। दास्य भाव की प्रधानता तो वैकुंठ में है, या मथुरा में और है, और द्वारिका में और दास्य रस है। लेकिन वृंदावन में वात्सल्य रस, सख्य रस और सर्वोपरि कौन सा रस है? माधुर्य रस का स्वादन वृंदावन में किए। और जब उम्र भी हो गई तो फिर गोपियों के साथ उनका मिलना जुलना प्रारंभ हुआ। संकेत आप गए कि नहीं? तो वहां पर भी मिलते थे। तो यहाँ कृष्ण रहने लगे नंदग्राम में, और राधा रानी कहाँ रहती थी? बरसाने में रहती थी राधा रानी, पहले बरसाने में गोकुल में कृष्ण, और रावल में राधा रानी रहती थी। वहां पर उन दोनों के गांव पास पास में थे। हरि बोल। क्यों कहा होगा मैंने, पता नहीं क्यों मुझे या सोने वालों का कुछ वक्ता तो उसे सहन करते हैं, इस बात को टालते हैं, लेकिन मुझे अरे बाबा क्या हुआ? सभी सुने, भगवान को सुने, मुझे मत सुनिए। आप किसको सुनिए? भगवान की लीला कथा भगवान है, और हमारा संबंध भगवान के साथ तभी स्थापित होगा जब हम भगवान को सुनेंगे। वैसे हम भगवान को देखना तो चाहते लेकिन भगवान को सुनना नहीं चाहते। ये समस्या हमारे हिंदू समाज में भी, भारत वर्ष में। हम दर्शन के लिए माथा टेकने के लिए तो जरूर जाते लेकिन सुनने के लिए भगवान को सुनते नहीं। तो भगवान भगवत गीता में जो बातें कहे उनको सुनते नहीं। और भगवान के संबंधित कथा दो प्रकार की है प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद कहा कथा दो प्रकार की, एक भगवत गीता जो भगवान ने कहे हुए वचन वो भी कथा है, और भगवान के संबंधित कही हुई कथा, तो दो कथा, स्वयं कही कहे कृष्ण और कहते हैं कृष्ण के संबंधित कथा। तो रावल के निवासी आ गए बरसाने रहने के लिए, वृषभानु और कीर्तिदा और नंद बाबा यशोदा यहाँ रहने के लिए आ गए। तो यहाँ ये जो सारा क्षेत्र है नंदग्राम बरसाना, ये सारी राधा कृष्ण के मिलन की स्थलिया है, गोचारण भूमि भी है। या अधिकतर यही दो प्रकार की लीला है, या दो प्रकार का रस, सख्य रस। गोचारण के लिए जब जाते हैं तो सखाओं के साथ जो रस जो आनंद मिलता है, सख्य रस का स्वादन इस क्षेत्र में किए हैं। और फिर गोपियों के साथ इस राधा रानी को कहा मिले थे, कल हम अंजन उनके आंखों में अंजन डाल दिए, अंजनाक, तो वहां गए मुरली बजाई तो वहां से या तो बरसाने से, और वैसे नंदग्राम के पूर्व दिशा में या इस दिशा में जावट है, जावट, तो राधा रानी का ससुराल भी नंदग्राम के पास, और राधा रानी का मायका, मायके, मायका की मायके, मायका, मायका भी पास में यहाँ बरसाने में, तो उनके साथ, और फिर घर में जब प्रातःकाल और सायंकाल नंद बाबा यशोदा के साथ कौन सा रस बोलिए, वात्सल्य रस, तो नंदग्राम में वात्सल्य नंदग्राम लिमिटेड कहिए, जहाँ यशोदा नंद बाबा के साथ समय बिताते सुबह शाम, ये वात्सल्य रस गाय चराने के लिए जाते तो कौन सा रस, सख्य रस, और भी कोई रस नहीं, नहीं जब गोचारण नहीं, और भी गायों के साथ भी रस, वात्सल्य रस, यस वात्सल्य, तो यह जब गाय चराते भगवान, तो गाय माता है, गाय कौन है, गो माता की, तो सारी गाय समझती थी कि ये कन्हैया कौन है, हमारा पुत्र है, हमारा बछड़ा है और हमारा वत्स है, इसलिए वात्सल्य भाव, इसलिए वो गाय सोचती कि हमारे जो गौशाला में जो वत्स है बछड़े है, वो तो हमारे पास आके हमारे थनों से सीधे दूध दूध का पान करते हैं, कन्हैया क्यों नहीं करते, ऐसे उनकी उनका विचार, हमारे बछड़े तो सीधे दूध पीते हैं, कन्हैया क्यों नहीं पीते ऐसा दूध, या कब पिएंगे वैसा हमारा दूध कन्हैया, ऐसे सारे गायों का विचार, सारे गायों का एक ही विचार, तो इसीलिए जब निवेद दिवाली के दिन वो जो घटना घटी, कन्हैया को दूध पिला रही थी यशोदा, गोद में लिटा के कन्हैया अपना स्तनपान करा रही थी, तो उनको बताओ तो चूल्हे पर गाय का दोहन किया हुआ दूध चूल्हे पर उसको उबाला जा रहा था, तो उस दूध ने सोचा, गाय का दूध पात्र में था चूल्हे के ऊपर उसको उबाला जा रहा था, तो उस दूध ने सोचा, है सुनो, उस दूध ने क्या सोचा, अब ये यशोदा का दूध पी के तो अपना पेट भर जाएंगे, तो फिर हमें नहीं पिएंगे, तो उस जो बर्तन में जो पात्र में चूल्हे के ऊपर दूध था उसने सोचा, तो फिर हमारा जीवन तो बेकार है, अब क्यों जिएंगे, जब हमको कन्हैया नहीं पिएंगे तो जिएंगे तो क्यों जिएंगे हम, चलो हम मर जाते हैं,
चलो
ऐसा किसने सोचा, दूध ने सोचा, दूध सोचता है ऐसा, गाय का दूध वैसा सोच रहा था, तो उस दूध ने आत्महत्या करने का विचार किया, और इसीलिए वो दूध उफनने लगा, तो जो चूल्हे की जो आग है उस आग में कूद पड़ा वो दूध, तभी आवाज सुनी थी यशोदा ने, और फिर यशोदा दौड़ पड़ी उस दूध की ओर, दूध की रक्षा के लिए, नहीं आत्महत्या मत करो, तुमको भी पियेंगे बाद में कन्हैया, तो ये चिन्मय धाम है, चिंतामणि प्रकर सदमसु ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಲಕ್ಷಾವೃತು ಸುರಧೀರಭಿಪಾಲಯಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ.
अक्रूर जब अक्रूर को जो भेजा नंद महाराज नंद ग्राम जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ, तो अक्रूर होना केवल स्मरण दिलाते कि वे वहां नहीं गए, लोही बाजार वृंदावन नहीं गए, लोही बाजार वाला जो वृंदावन, क्योंकि संसार भर के दिल्ली के भी लोग या आगरा के और कहीं कहीं के लोग वृंदावन मतलब उसका नाम भी है वृंदावन टाउन वृंदावन. तो अक्रूर वहां नहीं गए, अक्रूर तो नंदग्राम आए. तो श्रील प्रभुपाद उन तात्पर्यों में उस अध्याय में लिखते हैं, कोई वृंदावन जाना चाहता है, कोई वृंदावन की यात्रा करना चाहता है हरिभाव, तो कैसे यात्रा करना चाहिए? वैसे यात्रा करे जैसे अक्रूर ने यात्रा की. अक्रूर जिन भावों के साथ वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे मतलब ये नंदग्राम आ रहे थे, तो वैसे भावों के साथ आना चाहिए नंदग्राम. तो भगवान का चिंतन करते 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 आ रहे थे, करते करते मतलब हर पग पर ध्यान कर रहे थे भगवान. अनुक्षणम क्षण अनुक्षण, जिसके लिए वैसे ब्रजवासी प्रसिद्ध है, ब्रजीवासी और उसमें भी फिर गोपिया, भगवान का स्मरण सदैव भगवान को. वैसे गोपिया कहते गोपियों का तत्व ज्ञान तो बड़ा सरल है, गोपिया दो ही बातें जानती है, एक बात है कौन सी बात, स्मर्तव्य सततम स्मर्तव्य विष्णु. नोट करो आप लोग, रम्या काज उपासना ब्रज वधु वर्गे नहीं अकल्पिता, आराधना करनी है उपासना करनी है तो कैसी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, गोपियों की तरह करनी चाहिए. तो गोपियां कैसे करती आराधना, क्या है विशेषता उनकी आराधना की, बस कृष्ण का सदैव स्मरण करती है एक बार, और दूसरी बार कृष्ण को कभी कभी नहीं भूलती है. तो हमारी क्या स्थिति है, हम वो तो कभी नहीं भूलती और हम लोग कभी भी स्मरण नहीं करते, उनको मुश्किल हो, भूलना चाहने पर भी भूल नहीं सकती. कभी कभी गोपी गए भूल जाओ, कृष्णा हमें भूल चुके हैं तो क्यों ना हम भी उनको भूल जाए. कौन कौन भूलना चाहती है गोपियों, हाथ ऊपर करो. तो हाथ ऊपर करते करते उनको और कुछ याद आ जाता है और कृष्ण की कथा शुरू करती है, ओ वहां मिले थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ. तो वह सोचती तो है भूलने का कुछ विचार तो आता है लेकिन भूल नहीं सकते. और हम स्मरण करने का प्रयास तो हमारा होता है लेकिन प्रयास करने पर भी हम भूल जाते हैं, हमको यश नहीं मिलता, लेकिन हमको प्रयास नहीं छोड़ना है, हम लोग साधक है. तो प्रयास करते 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 क्या होगा, क्या होगा, एक दिन हम भी भगवान को स्मरण करेंगे। फिर इतना स्मरण करेंगे कि स्मरण करते ही रहेंगे। ये नहीं कि कुछ हिंदू हिंदू क्या कहते हैं कि हम दो मिनट के लिए प्रातः काल में दर्शन स्मरण करते हैं, जब उठते तो दो मिनट और शाम को जब सोते हैं तो और खुश हो जाओ भगवान, तुम्हारे लिए कितने मिनट, चार मिनट खुश हो जाओ, और बाकी सारे मिनट 23 घंटे और 56 मिनट किसके लिए, मेरे लिए, चार मिनट। ये हरे कृष्ण भक्तों में से हम थोड़े ही पागल है कुछ लोगों से, हम तो हम भी ध्यान करते हैं सुबह 2 मिनट शाम को। तो ये भक्ति नहीं है। फिर ऐसे व्यक्तियों को फिर भगवान के धाम में प्रवेश भी नहीं है। हम लोग खूब गोइंग बैक टू होम, वी आर गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड है, गिटार बजाते और कहते हैं वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, हमारे कैप्टन है श्रील प्रभुपाद। आप जंप इन द बोट, हमारे बोट में आ बैठ जाओ, हम आपको ले जाएंगे भगवान के धाम ले जा रहे हैं। तो गीत तो अच्छा है लेकिन उस बोट को और हमको गोलोक का जो एंट्रेंस है प्रवेश द्वार वहां शायद रोका जाएगा, पूछा जाएगा क्या, देखा जाएगा कि आप 24 घंटे आप भगवान का स्मरण कर सकते हो, ऐसा अभ्यास हुआ है आपका, तो उस स्थिति को हमको प्राप्त करना है। इसको कृष्ण कॉन्शियस कहते हैं, तो 2 मिनट कृष्ण कॉन्शियस, फिर शाम को 2 मिनट कृष्ण कॉन्शियस, इससे कुछ प्रगति तो हो गई, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो हो गया, हम लोग पुनः अवसर मिलेगा, पुनः मनुष्य योनि मिलेगी। और लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश की बात है, भगवत प्राप्ति की बात है, या भगवत धाम में भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करने की बात है, तो वो सतत युक्ता नाम कहिए या अहैतुकी अप्रतिहत अखंड। हरिनाम कैसा या स्मरण कैसा, जैसे कुंती महारानी कहती, जैसे गंगा का जो ओघ है, गंगा का जो जल है वो समुद्र में प्रवेश करता है, उसमें कोई खंड होता है
नहीं।
क्या केवल दिन में ही गंगा प्रवेश करती है, रात में कोई विश्राम करती है, या गंगा का कोई लंच ब्रेक हो गया तो गंगा रुकी हुई है, कुछ टी ब्रेक चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए कुंती महारानी ने कहा कि मेरा मन प्रभु आपकी ओर वैसा ही दौड़ता रहे जैसे गंगा दौड़ती है समुद्र की ओर, निम्नगा या समुद्र में प्रवेश करती है। तो इस ब्रजमंडल में हम लोग ये अभ्यास करने आए हैं, भगवान के स्मरण का अभ्यास, भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए हम आए हैं। तो लक्ष्य तो है पग पग पर हमारा, हम ध्यान करते रहे, भगवान का अगर ध्यान नहीं हो रहा तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए, फिर तभी आगे बढ़े जब भगवान का ध्यान हो रहा है, नहीं तो वो फिर चलना बेकार है, फिर हो गए गो खड़ा हो गया, गधे चलते हैं, गाय बैल चलते हैं, ऐसा हमारा चलना हुआ होगा। लेकिन स्मरण के साथ स्मरण के साथ।
तो स्मरण कौन करता है? हमारे शरीर में स्मरण करने वाला कौन है?
मन
है। और ये आध्यात्मिक मन, मन भी वैसे भौतिक
सूक्ष्म शरीर या अष्टधा आठ प्रकार, उसमें से मन को भी ऐसा उसका आध्यात्मिकीकरण, उसका स्पिरिचुअलाइजेशन, कृष्णाइज मन को करना होगा, ताकि वो मन भगवान का स्मरण, तो भगवान का स्मरण तभी होगा। वैसे भगवान के बारे में सुनेंगे हम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम। डू यू रिमेम्बर माय फ्रेंड? और किसी ने पूछा, आप मेरे मित्र को, आपका मेरा मित्र आपको याद है? डू यू रिमेम्बर हिम? तो आप शायद उल्टे प्रश्न, विच फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड, कैसा दिखाई देता है आपका फ्रेंड, कहाँ रहता है आपका फ्रेंड, इसका मुझे आप पूछ रहे, स्मरण करते हो कि नहीं, पहले बता दो, क्या मैं कभी मिला था उनको, क्या करते हैं, उनका क्या कार्यकलाप है, उनके कौन से मित्र है, तब उस मित्र का स्मरण का प्रश्न उठता है थोड़े में। तो कृष्ण का स्मरण तभी होगा जब हम कृष्ण के संबंध में क्या करेंगे, सुनेंगे कृष्ण के संबंध में, तभी कृष्ण का स्मरण होना है। इसीलिए ये नंबर वन बिजनेस भक्तों के लिए क्या होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो स्मरण के पहले श्रवण कीर्तन है, और ये प्रजा मंडल हमको वो सु अवसर प्रदान करता है श्रवण का। और वहां जाओ, और वहां जो लीला हुई उस लीला का उसी स्थान पर बैठ के श्रवण करो, पहले श्रवण करो, और श्रवण के साथ साथ फिर जो बातें सुनी है उसको उसका मनन करो, उसका चिंतन करो। जैसे पहले गाय खाती है घास और फिर बैठ के क्या करती है, चुगाली करती है। तो राधा रमन महाराज और महाराज कविचंद महाराज सुनाते हैं कोई कथा, तो झट झट से सुन लिया, वो तो बोलते रहते हैं। तो फिर बाद में क्या, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे तो क्या करना चाहिए, चुगाली करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उस लीला का मनन करना चाहिए, ताकि वो हजम होगा, हृदयंगम होगा। गाय जब पहली बार जो घास खाती है उस घास से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जब चुगाली करती है तो उस घास का रस बनता है, फिर रस से फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, और क्या क्या शरीर बनेगा। तो हमने जो बातें सुनी है पढ़ी है उनका पुनः चिंतन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, और इतना मनन चिंतन होगा कि फिर मुख से वही बात निकल आएगी जो हम सोचते हैं, उसी बात को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, और कभी कभी वैसे सोचे बिना ही हम लोग बोलते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, ऐसा क्यों मैंने बोला, क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो ये नंदग्राम कई सारे स्थान है, जैसे अष्ट सखियों के गांव है बरसाना मध्य में, और सभी दिशाओं में जैसे अष्ट सखियों के गांव है, तो कृष्ण के भी अष्ट सखा है। तो नंदग्राम मध्य में और अष्ट सखाओं के गांव सभी दिशाओं में है, वो एक बात। हमारे यह वृंदा देवी का एक विशेष मंदिर भी नंदग्राम के
पास नहीं है। एक वृंदा देवी का दर्शन तो आप कहाँ किए, काम्य वन में किए, और फिर यहाँ का जो वृंदा देवी का मंदिर है इस्कॉन, कोई इस्कॉन ही संभालता उस मंदिर को, मंदिर का नवनिर्माण और नए विग्रह की स्थापना हमारे दीन बंधु प्रभु इस्कॉन पंडा तो उनकी अध्यक्षता में वो वृंदा देवी का मंदिर वो भी नंदग्राम के पास ही है। आपको बताया जावट बिल्कुल पास में है, जहाँ से राधा रानी बारंबार नंदग्राम जाती है भोजन बनाने के लिए। राधा रानी बड़ी तो सुंदर ही नहीं है, पाक शास्त्र कुकिंग की जो कला है उसमें बड़ी कुशल है राधा रानी। इस बात को यशोदा जानती इसलिए बारंबार बुलाया करती है, आओ आओ कन्हैया के लिए भोजन बनाओ, मिष्टान्न बनाओ। और यशोदा ये भी जानती है कि राधा रानी को वरदान मिला था। किसने वरदान दिया? दुर्वासा का वरदान। तुम जो भी भोजन बनाओगी और तुम्हारे हाथ का जो भी भोजन खाएगा उसका स्वास्थ्य बना रहेगा, यू मेंटेन गुड हेल्थ। यशोदा इस बात को जानती है इसलिए भी बुलाती रहती है राधा रानी को नंदग्राम, और राधा रानी बड़ी खुशी से वो भी आना चाहती। उसके बहाने कृष्ण का क्या हो जाएगा? दर्शन होगा, बस कृष्ण का दर्शन। कृष्णा 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 बस कृष्णा, बस कृष्णा ही। राधा रानी कहो कि गोपिया है या ग्वाल बाल है, गाय है, नंद यशोदा है, बस इनका जीवन क्या है? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मो जुगल किशो। तो राधा तो क्या कृष्ण के बिना जी नहीं सकते। तो अक्रूर भगवान का स्मरण करते 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 नंदग्राम की ओर आए, सायंकाल को यहाँ पहुंचे। तो रास्ते में मैं कितना भाग्यवान हूँ, न जाने कौन से पुण्य का फल मुझे आज मिल रहा है। मैं नंदग्राम जाऊंगा तो वहाँ कृष्ण और बलराम को मिलूंगा, उनका दर्शन होगा, अंग संग होगा। इस आशा से इस विचार से दिन भर रथ को हाँकते 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 नंदग्राम के कुछ पास में पहुंचे। तो रास्ते के बगल में उन्होंने थोड़ा देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो उनको कृष्ण कन्हैया के कुछ ताजे फ्रेश फुटप्रिंट्स दिखाई पड़े। फुटप्रिंट समझते हो? तो फुटप्रिंट्स तो ध्यान से देखा तो किसी साधारण मनुष्य के तो वे नहीं थे। चरण चिन्ह, चरण चिन्हों में चिन्ह, समझते हो? चरण चिन्ह, और उसमें अलग अलग चिन्हों से अंकित थे वे चरण चिन्ह। तो झट से समझ गए चरण चिन्ह किसके होने चाहिए? कृष्ण के होने चाहिए। इसीलिए ऐसे ही उन्हें देख लिया और आगे बढ़े, ऐसा संभव नहीं हुआ। रथ को हाँक रहे थे तो उनका लगाम अगर हाथ से वही छूट गया और वे गिर पड़े और चरण चिन्हों को स्पर्श करते हुए हरि बोल। विफल हुए, लौटने लगे उस धूल में जहाँ कृष्ण अभी अभी हो सकता अभी अभी वहां थे, कुछ समय पहले थे, या चल कैसे चल के गए, या भूमि को स्पर्श हुआ कृष्ण के चरणों का, और वहां की हवा में सुगंध, भगवान के शरीर, भगवान का शरीर कैसा है, सुगंधित है, और हमारे शरीर दुर्गंध से भरे हैं। अब एक दिन स्नान वगैरह नहीं करोगे, दांत वगैरह नहीं घिसोगे, आंख कान को और पुर्जों को और जो नव द्वार है उनकी सफाई नहीं करोगे तो लोग नाक बंद करेंगे आप पास में आने से, दूर रहो तुम। तो वैसे दुर्गंधी से बचने के लिए पाउडर वगैरह, पाउडर का उपयोग होता है ताकि लोग पास में तो आ जाएंगे यार। और सब लोग इस प्रकार माया या भ्रम पैदा करते हैं या कृष्ण की नकल करते हैं, कृष्ण का शरीर सुगंधित है तो चलो हम भी पाउडर या और कुछ पहन के क्या करते हैं हमारे शरीर को भी, लेकिन ये तो धोखा है, ये ठगाई है, ये भ्रम है, ये माया है। ऐसी पाउडर लगाना भी और ऐसे पाउडर से आकृष्ट होना भी भ्रम है, लेकिन दुनिया पागल है। तो इस पागलपन से बचना है, इसीलिए कृष्ण भावना है, इसीलिए हम लोग ब्रजमंडल में आए हैं। तो कृष्ण का शरीर सुगंधित हुआ तो अक्रूर वो सारा अनुभव करने लगे और सारी कल्पना चरण चिन्ह देखे तो फिर उनको सारे भगवान के सर्वांग का वो स्मरण करने लगे। तो फिर मुश्किल से उन्होंने संभाला स्वयं को, पुनः रथ में बैठे और नंदग्राम की ओर आगे बढ़े, और नंद भवन के प्रांगण में जब वे पहुंचे तो उन्होंने क्या दृश्य देखा, कृष्ण और बलराम अभी अभी लौटे थे गोचारण लीला से, अभी अभी कृष्ण बलराम लौटे थे और अभी अभी स्नान करके, अभी अभी नए वस्त्र पहन के, नीले वस्त्र पहने थे बलराम ने और पीतांबर वस्त्र धारण किए थे कृष्ण ने, और भी वर्णन जैसा उन्होंने देखा, और वे गौशाला की ओर, उनके हाथ में कुछ पात्र थे, बर्तन थे गाय दोहन के लिए, गौशाला की ओर जा रहे थे। लेकिन इतने में उन्होंने जब अक्रूर जी को देखा तो अक्रूर जी वहां से फिर रथ में, पहले तो चरण चिन्ह देख के धड़ाम करके गिरे थे, अब तो साक्षात कृष्ण बलराम को सामने देखा तो पुनः उन्होंने साष्टांग दंडवत किया हुआ है, और कृष्ण और बलराम भी अक्रूर की ओर दौड़े हैं, और चाचा चाचा अंकल अंकल अक्रूर जी आए, अंकल तो बड़े बड़े प्रसन्न हो गए कृष्ण और बलराम, और वे ले गए नंद भवन में और नंद महाराज से यशोदा से मिलाए अक्रूर को कृष्ण बलराम। तो फिर रात्रि को रुक गए अक्रूर और प्रातः काल में, तो किस उद्देश्य आए थे सब, रात में खूब चर्चा हुई, मथुरा में उत्सव मनाया जा रहा है, मल्ल युद्ध होगा, जंगी मैदान कुश्ती का, अवा धनुर्यज्ञ भी हो रहा है, आप सब पधारिए, मथुरा नरेश कंस का पर्सनल इनविटेशन है, आमंत्रण है, आप सभी आइए, उत्सव होगा तो साथ में कुछ गोरस, गोरस समझते हैं, गोरस मतलब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मक्खन इत्यादि, इसको गोरस कहते हैं, गोरस लेके आइए। तो नंद बाबा ने डिंडोरा पीटा सारे ब्रज में, सारे नंदग्राम में, तो सभी लोग दूसरे दिन जाने के लिए तैयार भी हो गए,
कृष्ण बलराम तो तैयार थे ही, उन्होंने सोचा कि
बहुत अच्छा अवसर है, कंस मामा हमको बुला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, परित्राणाय साधु नाम और विनाशाय सदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। हम जिस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं वो उद्देश्य अब सफल होगा जब हम मथुरा में पहुंचेंगे। अब तो उनके जो एजेंट्स आया करते थे, उनके भेजे हुए जो असुर गण आया करते थे, वे मथुरा से किसी वन में आते ही थे लेकिन पुनः वे मथुरा लौटते नहीं थे। उनको यमपुरी का टिकट दे के कृष्ण उनको आगे बढ़ाते थे, स्वाहा स्वाहा आहुति चढ़ाते थे एक एक असुर की, प्रलंब असुर स्वाहा और अघासुर स्वाहा और बकासुर स्वाहा तृणावर स्वाहा पूतना मैया स्वाहा। तो इस प्रकार तो इन सभी असुरों के जो महाआसुर या मालिक आसुर जो थे, तो अभी तो छोटे मोटे असुरों का तो वध किया था, लेकिन जो उनके प्रधान थे उनका वध करने का उनको अवसर दिखाई दिया। वे स्वयं ही बुला रहे हमें, स्वयं ही बुला रहे, आओ और क्या करो, हमारा वध करो, आमंत्रण भेजा है हमारा। तो कृष्ण बलराम तैयार हुए और रथ में बैठे, अक्रूरा ने रथ सजा हिला और सब। तो गोपिया बेचारी गोपिया सोच रही थी, बाकी सब तो जाएंगे लेकिन हम तो नहीं जा सकती, तो बड़ी दुखी थी। और कौन ले जा रहे कृष्ण बलराम को, अक्रूर ले जा रहे हैं। कैसा तुम अक्रूर, अक्रूर मतलब दयालु, अक्रूर मतलब दयालु, जो क्रूर नहीं है वह अक्रूर, लेकिन नाम तो अक्रूर है लेकिन ये व्यक्ति कैसा है, बड़ा क्रूर है। इसने उसका गला भी पकड़ ली, तुम कौन हो हमारे प्राणनाथ को ले जा रही हो। लेकिन कन्हैया भी वैसे जाना चाहते थे, कोई ड्यूटी भी है वध करने की, तो हुआ। तो कृष्ण आगे बढ़े बलराम के साथ रथ में विराजमान होके, और जाते जाते कृष्ण ने क्या कहा, आया से अभी अभी मैं आता, अभी अभी आएंगे, अभी आ ही रहे, आता आते है आते मथुरा से लौटते हैं, ऐसा कह तो दिया। रथ आगे जा रहा था, रथ के पहियों की धूल उड़ रही थी, गोपियां देखती रही रथ की ओर धूल की ओर, गोपियां प्रार्थना कर रही थी अभी कोई आंधी तूफान अगर आती है तो अच्छा होगा, रास्ते के बगल में कई जो वृक्ष है अगर वो गिर जाते हैं तो रथ का आगे बढ़ना मुश्किल होगा, फिर हम जाके मिलेंगी या पुनः कृष्ण लौटेंगे। इस प्रकार की प्रार्थना कर रही है, अच्छी है प्रार्थना, अच्छी तो नहीं है लेकिन यह आध्यात्मिक प्रार्थना तो है कृष्ण को मिलन के लिए, इस प्रकार की प्रार्थना कर रही है। तो गोपिया तो बेचारी गोपिया उनके मानो प्राण चले गए, तो वही खड़ी हुई और वही बैठी और लेटी रही कई दिनों तक। उन्हें सोचा कि अब घर में क्या है, नंदग्राम में क्या है, नंदग्राम का हमारे घर का प्राण ही नहीं रहा, तब घर लौटने का क्या मतलब है। तो कुछ तो वहीं बैठी रही और फिर कई दिनों के बाद फिर धीरे धीरे अपने अपने घरों में नंदग्राम में वो प्रवेश की।
तो वो स्थान भी, वो मार्ग भी है, जब आप पहाड़ पर चढ़ोगे, नंदग्राम का पहाड़, वैसे शिव जी है इसका भी स्मरण दिलाते हैं, वहां नंदेश्वर है, तो उस पहाड़ पर चढ़ोगे तो पूर्व दिशा में शायद आपको दिखाया जाएगा, अगर अमन महाराज वहां के पंडा भी दिखाते, इस मार्ग से पूर्व दिशा में अक्रूर का रथ का जो मार्ग रहा वो मार्ग वहां से दिखाई देता है। और फिर ये अक्रूर की यात्रा हुई, फिर कौन आ गए, उद्धव भी आए, क्योंकि कृष्ण वहां गए, उन्होंने वध किया, कंस का वध किया और देवकी और वसुदेव को मिले, 11 सालों के बाद वे मिल रहे थे। जब जन्म हुआ था तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए वसुदेव देवकी के साथ रहे और रातों रात उनको गोकुल ले गए थे वसुदेव, वसुदेव पुनः लौटे, अब 11 वर्ष के थे, बलराम की उम्र 1 साल अधिक थी, तो उतने सालों के उपरांत वसुदेव और देवकी को मिले और फिर वही रहे कृष्ण बलराम। फिर उज्जैन भी गए, अवंतीपुर वहां पढ़ाई के लिए गए, वहां से लौटे और फिर जरासंध आए, उनके साथ लड़ते रहे 18 साल, इसलिए उनका वृंदावन लौटना नहीं हुआ। और कृष्ण ये भी सोचते थे कि मैं वृंदावन लौटूंगा तो मथुरा में जो लड़ाई होती है, जरासंध आता है सैन्य लेके, तो सारा आतंक मच जाएगा, हाहाकार, वृंदावन मच जाएगा, इसलिए अच्छा मैं वृंदावन से दूर रहूं। ऐसे कुछ कारणों से कृष्ण बलराम मथुरा में ही रहे, लेकिन वृंदावन वासी तो मिस कर रहे थे कृष्ण को, उन्होंने कहा तो था कि अभी अभी आता हूं, आया से, लेकिन आए नहीं, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, कितने साल बीत गए, 18 साल भी, 100 साल नहीं, 18 साल मथुरा में बीत गए। तो हर साल वो युद्ध खेलते थे जरासंध के साथ, तो मथुरा वासी राह देख रहे थे, कुछ पत्र का एक्सचेंजेस ऑफ लेटर्स तो चल रहा था, पत्र यहाँ से भेजे जाते थे, कृष्ण भी कुछ उत्तर देते थे, लेकिन स्वयं नहीं आए। लेकिन कृष्ण भी वैसे भूले तो नहीं थे, भूल नहीं सकते थे वृंदावन को, अपने अपने मित्रों को, नंद बाबा यशोदा को, गोपियों की सांत्वना करने हेतु उन्होंने उद्धव को चुना, और उद्धव को उसी रथ में या वैसे ही दिखाई देने वाले रथ में बिठा के वृंदावन भेजे। तो उद्धव जब आ रहे थे उस रथ में बैठ के, तो ब्रजवासियों ने जब रथ की ओर देखा तो उनको हर्ष, आ गए, पिछले कई सालों से, 10-15 सालों से कोई रथ को मथुरा की ओर से लौटते हुए नहीं देखा, और जब रथ को देखा तो झट से उन्होंने विचार किया, कौन लौट रहे होंगे, कृष्ण लौट रहे। तो रथ और पास में आ गया तो उन्होंने देखा रथ में तो एक ही व्यक्ति बैठा है, गए तो थे दो और लौट रहा है एक, तो शायद ये कृष्ण नहीं होंगे, कृष्ण अकेले नहीं आएंगे, कृष्ण और बलराम तो साथ में रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो एक ही है, तो शायद ये कृष्ण नहीं होंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब उन्होंने और ध्यान से देखा तो वो व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति रथ में बैठे थे वे हूबहू कृष्ण जैसे दिखाई दे रहे थे, वही घनश्याम वर्ण, वही पीतांबर वस्त्र, वैसे ही मुकुट, लेकिन मोर पंख तो नहीं है, मुकुट है लेकिन मोर मुकुट नहीं है, तो शायद पुनः तो उनको लग रहा था कि ऐसे कृष्ण जैसे दिखाए, वस्त्र वैसे ही है,
शायद कृष्ण हो सकते लेकिन मोर मुहूर्त नहीं है। और भी पास जब रथ आया तो उनकी आशा की हो गई दुर्दशा, निराशा हो गई और वे समझ गए कि ये तो कृष्ण के भ्राता है, मित्र है, मंत्री है, ये तो उद्धव जी है। तो उद्धव के साथ मिलना जुलना सभी का हुआ, सभी को मिलने आए थे, संदेश लेके आए थे, विशेष करके गोपियों के लिए संदेश था उद्धव, संदेश कृष्ण का ही संदेश पत्र लेके आए थे। तो आगे उद्धव क्यारी यही है, तो उद्धव क्यारी इसी क्षेत्र में पहले तो बन हुआ करता था, क्या थोड़ा सा आगे है उद्धव क्यारी, जहाँ उद्धव बीच में बैठे थे और सारी गोपियों ने घेर लिया, क्या संदेश लाए हो, क्या कब आ रहे कन्हैया, कब आ रहे, कब आ रहे, कब आ रहे। उस समय एक भ्रमर भी आ गया, तो उन्होंने सोचा हे गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, हमको नहीं ठगाना। उन्होंने सोचा कि ये भी संदेश वाहक है ये भ्रमर, तो भ्रमर गीत नामक गोपियों का गीत है, गोपियों का ही वचन है, भाव है, तो भ्रमर गीत कहते हैं, और गोपियों ने अपने भाव प्रकट किए हैं। और फिर कृष्ण से लाया हुआ जो पत्र था वो पढ़ के सुनाए है उद्धव, अंतमना का प्रयास तो हुआ है, लेकिन तो गोपियों का जो भाव, गोपियों की जो भक्ति है, कृष्ण ने जो भेजा था उद्धव को, उसका उद्देश्य ये भी था कि ये बृहस्पति का शिष्य जरूर है, विद्वान जरूर है, ज्ञानी जरूर है, लेकिन ये वैसा भक्त नहीं है जैसे हमारे वृंदावन के भक्त है, जैसी मेरी गोपियां है, तो चलो मैं इनको भेजता हूं ताकि ये ब्रजवासियों को मिलेंगे, अरे माता पिता को मिलेंगे, मित्रों से मिलेंगे और गोपियों से मिलेंगे, तो भक्ति क्या होती है, भाव क्या होता है, प्रेम क्या होता है, इसके सारे लेसन्स, ये सारी सीख इनको मिलेगी उनके साथ रहने से, उनके हाव भाव से, उनके बोल चाल से, यहाँ के ब्रज भक्तों के बोल चाल से। ये उद्देश्य से भी भगवान भेजे थे अक्रूर को, उद्धव को। तो यही उद्धव, इसी उद्धव को भगवान ने जब कहा कि तुम बद्रिकाश्रम रहने के लिए जाओ, द्वारिका में भगवान अपने लीला का समापन कर रहे थे, तो अब उद्धव से मिले तो वहां वे कहे थे तुम बद्रिकाश्रम जाके रहो, तो वे बद्रिकाश्रम भी रहने के लिए गए और साथ साथ वे वृंदावन भी आके रहे। वृंदावन में कुसुम सरोवर के तट पर, गोवर्धन कुसुम सरोवर के तट पर, और फिर हमें अपने उद्धव बैठक भी देखी होगी, उद्धव बैठक उद्धव कौन देखा होगा, वहाँ के जो सारे लता पता, वहाँ का घास इत्यादि जो है, ये सारे कौन है, ये सारे उद्धव, उद्धव घास बन के वहाँ रहते हैं, इस आशा से कि गोपिया जब पुष्पों का चयन करने आएगी तो उनके चरणों की धूल हमको भी मिल जाएगी, चलो हम यह पत्ता बन के घास बन के रह जाते हैं क्या। तो और नंद भवन आप देखोगे, यशोदा के घर भी जाओगे और जो जिस बड़े मिट्टी के पात्र वहां है, जिसमें दही जमाना या दही का मंथन करना इत्यादि करते भी हुआ करते थे, और हाव भाव, क्या हाव 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 बिलाव, हाव बिलाव, ए दूर नहीं जाना, हाव हाव, या हाव है, हाव बिलाव है, डराती है छोटा, अंदर दूर नहीं जाना घर से या गांव से,
या हाव बिलाव है तो डराती थी, तो वो स्थान भी शायद देखने वाले हो, तो कई सारे अनंत लीला है भगवान की, अनंत अलिया भी है लीला की। तो हम सब भगवान है, हम दो दिन के लिए पड़ाव होगा नंदग्राम में, ठीक है कि नहीं?
हरि बोल।
नहीं हरि बोल नहीं है,
हरि बोल।
तो कृष्ण जिस गांव में रहते हैं, राधा रानी जिस गांव में रहती वहां तो चार दिन आप रुक के आए, और अब कृष्ण के गांव में कितने दिन रहोगे?
दो दिन दो रात एक दिन। तो वह और भी श्रवण का और स्मरण का अवसर है, तो बाकी सब चिंता को भूल जाइए। चिंता के स्थान पर क्या करना है? चिंतन करना है, और एक दूसरों को स्मरण दिला दो, कथा सुनाओ, उनके कानों में कथा भरो, और मोबाइल को मारो गोली, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। तो वह फोन ऑफ भी कर सकते हो, भगवान से फोन करते जाओ, कॉल या सस्ते चल रहे हैं, लोकल कॉल है, तो खूब कॉल करो, कृष्ण को बुलाओ पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सैयन्नामृत पाओ और फिर सो जाओ, सैयन्नामृत पाओ। ओके, अब ट्रेंड हो रहे हैं, कम से कम ज्ञान तो हो रहा है, विज्ञान। राघव प्रेमानंदे।